त्रिलोक सार लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वैच्छायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्। बलगोविंद सिहामणि किरणकलावरुण चरणन किरणम्, विमलयरणेमि चन्दम्, त्रिभुवन चन्दम् नमंसामि। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित यह त्रिलोकसार नामक ग्रंथ है और उसकी हिंदी टीका हम पढ़ रहे हैं और अभी आए हैं पृष्ठ संख्या 58 पर, 58। यहाँ 14 धाराओं की बात अपनी चल रही है। 14 धारा में से हमने क्या क्या देखा था याद है ना? सर्वधारा, पहले सर्वधारा, फिर समधारा,
विषमधारा,
कृतिधारा, अकृतिधारा, घनधारा, अघनधारा, नहीं घनाघन यहाँ नहीं। अभी यहाँ होता है कि कृति मातृक, जिसको वर्ग मातृक कहेंगे, वर्ग मातृक या कृति मातृक धारा और अकृति मातृक धारा, फिर घन मातृक और अघन मातृक। इस तरह से अभी अवर्ग मातृक धारा की अपनी बात चल रही है। 58 पेज पर आए हम, यहाँ हम पढ़ेंगे अभी 64 नंबर का ये जो गाथा है उसको हम कहेंगे। घन मातृक धारा की बात करेंगे, यानी पहले हमने वर्ग मातृक को देखा, जिन संख्याओं का वर्ग हो सकता है उन संख्याओं को वर्ग मातृक कहते हैं और उनको छोड़कर शेष सभी अवर्ग मातृक संख्या आती है, उस धारा में आती है। तो हमने देखा था किसका वर्ग हो सकता है, तो केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल तक की संख्याओं का वर्ग हो सकता है, एक से लेकर 1, 2, 3, 4, 5।
कल आपने बताया था कि मुझे याद नहीं रहा।
हाँ,
ये लास्ट लाइन जो है इसके विशेषण।
हाँ,
धारा में केवल ज्ञान के अर्धक्षेत्र वर्गशाला का वर्गमूल नहीं पाए जाते हैं।
हाँ,
तो वर्गमूल 256 बताया था, वर्गशाला का 16 बताया था,
वर्गशाला का 4 थी,
वर्गशाला का 4
और अर्धक्षेत्र 16। मैं आपका प्रश्न मैं फिर रिपीट करती हूँ। ये जो कल हमने विशेषार्थ पढ़ा था, अवर्ग मातृक धारा की बात है, तो अवर्ग मातृक धारा हमने तो पनट्ठी को केवल ज्ञान मानकर यहाँ सब संदृष्टि बनाई है, 65536 को। तो यहाँ क्या लिखे, इस धारा के समस्त स्थान केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से रहित, यानी 1 से लेकर 256 तक के जो सभी संख्याएं हैं उसको हम वर्ग मातृक धारा में लेते हैं। इनको छोड़कर यानी 257 से लेकर पनट्ठी तक की सभी संख्याएं हैं वो अवर्ग मातृक धारा में आती है, जैसे 257, 258, 259, 260 और लास्ट में तीन फिगर बताइए, 65534, 65535 और अंतिम स्थान 65536। ये हमने ये संदृष्टि बनाई है ना, ये तो फॉर एग्जाम्पल लिया है। इस धारा में यानी ये क्या क्या नहीं आते हैं वो बताया है। प्रथम वर्गमूल तो नहीं आएगा क्योंकि 256 के बाद वाली संख्या उसमें ली है। ये पनट्ठी का प्रथम वर्गमूल है 256, वो भी इस धारा में नहीं आएगा। अब कहते हैं कि पनट्ठी का जो अर्धच्छेद है, कितनी बार दो संख्या लिखकर ये संख्या आती है उसको अर्धच्छेद कहते हैं, तो उसके अर्धच्छेद कितने हमने देखे थे, 16 है। 16 बार दो दो लिख के आपस में गुणा करेंगे तो पनट्ठी का प्रमाण आता है, तो ये 16 संख्या भी उसमें कुछ आने का सवाल ही नहीं है। ऐसे ओरिजिनल यथार्थ में भी केवल ज्ञान के अर्धच्छेद है वो केवल ज्ञान के वर्गमूल से छोटी संख्या है, बहुत छोटी संख्या है, वो भी इस धारा में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका तो वर्ग हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। वो वर्ग मात्र को भी आएगी, इसमें नहीं आएगी। अब कहते हैं वर्गशलाका यानी वो जो वर्ग स्थान है वो कौन से द्विरूप वर्ग धारा में कहाँ पर पाई जाती है, जैसे हमारे हमने पनट्टी का एग्जाम्पल लिया, वो चौथे स्थान पर है, वो चौथा वर्ग है। जैसे चार ये पहला वर्ग स्थान है, 16 दूसरा वर्ग स्थान है, 256 तीसरा वर्ग स्थान है और पनट्टी चौथा वर्ग स्थान है। तो ये जो चार संख्या है वर्गशला का, वो भी उसका भी वर्ग तो हो सकता है। पनट्टी तक की संख्याओं को देखना है हमको, वो भी 256 से छोटी संख्या है, तो उसका भी वर्ग हो सकता है, उसको वर्ग मातृक में लेना। इसको कहते हैं अवर्ग मातृक धारा में वो संख्याएं नहीं आएगी। यानी यहाँ ये बात बता रहे हैं कि केवल ज्ञान के अर्धच्छेद, केवल ज्ञान की वर्गशला का जो राशि है वो, यानी उसका वर्गशला का में स्थान और फिर उसका प्रथम वर्गमूल, ये संख्याएं इनके वर्ग हो सकते हैं, वो अवर्ग मातृक धारा में नहीं है। ये समझ में आई इसका अर्थ? हाँ, ये कल के विशेषार्थ की बात हुई। अब यहाँ ये जो नई धारा बताएंगे ना, घन मातृक धारा, जिन संख्याओं का घन हो सकता है उन संख्याओं को लेना। एक का होगा, दो का होगा, तीन का होगा, चार का होगा, कहाँ तक होगा? आसन्न घन मूल तक की संख्याओं का घन होगा। क्या कहा मैंने? घन नहीं, आसन्न घन मूल। जैसे हमने देखा वो ऊपर वर्ग मातृक धारा में केवल ज्ञान के प्रथम वर्ग मूल तक का वर्ग हो सकता है। अब हमने घन निकाला था, घन में आसन्न घन की बात निकाली थी और उसका घन मूल लिया था, तो एक दो तीन चार से लेकर आसन्न घन मूल तक की सभी संख्याओं का घन हो सकता है। आसन्न घन मूल का जो घन है वही अंतिम घन रूप संख्या है, ख्याल में? तो उसके घनमूल को हम मातृक कहेंगे, उसका जिस संख्या से वो उत्पन्न होता है घन, उसको घन मातृक धारा कहते हैं। तो हमने वो निकाला था, कैसे निकाला था आपको याद होगा शायद, केवल ज्ञान का आधा लिया था, वो भी घनरूप संख्या है, तो घनरूप संख्या तो उसका घनमूल निकाला था, और उसके ऊपर कितनी कौन सी संख्याओं का घन हो सकता है उसको उसमें ऐड किया था, तो आसन्न घनमूल आया था। जब अंतिम संख्या जिसका घन हो सकता है उसको कहेंगे आसन्न घनमूल, और उसके घन करने पर उसको कहेंगे आसन्न घन। आसन ने केवल ज्ञान के अर्लीएस्ट उसके पूर्व वाला घन रूप संख्या कौन सी है, तो उससे आधे से थोड़ी ऊपर वाली है, उसको आसन्न घन कहा था। अब यहाँ घन मातृक में हम पढ़ेंगे, अभी पहले में पहले श्लोक पढ़ेंगे, वो गाथा 64 नंबर की पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, 58 नंबर के पृष्ठ पर बात अपनी चल रही है। घन माउगस सौवग धारम वासौ पश्चिमो राशि आसन्न बिंद मूलम तमेव ठाणम विजानाहि। घन मातृकायाः सर्वक धारा इव सर्व पश्चिमो राशि आसन्न वृंद मूलम तदेव स्थानम विजानीहि। अब इसका हम अर्थ देखते हैं, गाथा पहले पढ़ेंगे। देखो घन मातृक धारा का स्वरूप, घन मातृक धारा की स्थानादि संबंधी प्रक्रिया सर्वधारा सदृश होती है। यानी घन मातृक धारा के स्थान की प्रक्रिया ने क्या है, सर्वधारा में हमने कैसे शुरू किया था, 1 2 3 4 5 6 अंतिम स्थान था केवल ज्ञान, यानी प्रक्रिया शुरू तो वैसे ही होगी, पर यहाँ अंतिम स्थान तो आसन्न घन मूल तक होगा, वो वाला उसका होगा। इसमें इतनी ही विशेषता है कि डिफरेंस क्या है वो बता रहे हैं, इस धारा का अंतिम स्थान केवल ज्ञान के आसन्न घन के घनमूल प्रमाण है। इसका अर्थ समझ में आई ना अभी बात? अभी जो हमने चर्चा की थी, केवल ज्ञान के पूर्व वाली घन रूप संख्या कौन सी है, जिसको कहेंगे आसन्न घन कहेंगे। कल हमने देखा था अपने पनट्ठी वाले उदाहरण में 65536 के पूर्व घन रूप संख्या कौन सी आती है, तो 40 का घन 64,000 देखा था वो, उसको आसन्न घन कहेंगे और उसका घनमूल क्या है 40, तो आसन्न घनमूल कौन सा होगा 40। तो पनट्ठी प्रमाण संख्याओं में सर्वधारा में एक से पनट्ठी तक सभी संख्या सर्वधारा में आती है, परंतु घन मातृक धारा कौन सी है, तो एक से लेकर 40 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 67, 37, 38, 39, 40, ये क्या हो गई घन मातृक धारा। यही कह रहे यहाँ पर कि सर्वधारा से इसमें क्या डिफरेंस है, क्या विशेषता है, कि इस धारा का अंतिम स्थान केवल ज्ञान के आसन्न घन के घनमूल प्रमाण है, अतः इस धारा के स्थान भी केवल ज्ञान के आसन्न घन के घनमूल प्रमाण ही है। जैसे हमारे उदाहरण में हमने देखा था कि 64,000 आसन्न घन है, उसका घनमूल 40 है, तो एक से लेकर 40 तक के सारे घन मातृक धारा के स्थान है, तो घन मातृक धारा में टोटल स्थान कितने हैं, तो 40 है, आसन्न घनमूल जितने हैं। विशेषार्थ, जो संख्याएं घन उत्पन्न करने में समर्थ है उन्हें घन मातृक कहते हैं, केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल पर्यंत तो सभी संख्याओं का घन हो सकता है, किंतु यदि इससे एक अंक अधिक का भी घन किया जाएगा तो केवल ज्ञान के प्रमाण से अधिक प्रमाण हो जाएगा। इसलिए एक को आदि लेकर, एक से लेकर केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल पर्यंत इस धारा के स्थान होते हैं। हमने अपने उदाहरण में पनट्ठी को मान लिया है केवल ज्ञान, तो इसमें कैसे होगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिल्कुल एक एक से बढ़ते हुए 9, 10 आदि, बीच में डॉट डॉट यानी बीच के सारे समझ लेना, अंत के 2, 4, 5 बता दिए उन्होंने, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। केवल ज्ञान का प्रमाण 65536 है और आसन्न घन 64,000 है। ये हमने कल देखा था कैसे निकालना, क्या करना, हमने क्या किया था पहले में, पहले उसका आधा किया था, 65536 का आधा किया, कितना आया 32,768 आया, वो घन रूप संख्या होती है, तो उसका घनमूल निकाला तो वो था 32, उसके ऊपर एक एक बढ़ाते हुए उसके घन होता है कि नहीं हम देखते गए, तो कहते 40 का घन हो सकता है 64,000, उसके ऊपर 41 का घन करने जाओ तो वो तो एक्सीड हो जाता है, उसको नहीं लिया था हमने। तो कहते आसन्न घन 64,000 है, अतः इसका प्रथम घनमूल 40 है, जो घन मातृक धारा का अंतिम स्थान है, यानी 40 से एक भी बढ़ जाए तो उसका घन नहीं हो सकता। इस धारा में केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल तो पाया जाता है, क्योंकि उसका घन केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से गुणित द्वितीय वर्गमूल होता है, जो केवल ज्ञान से कम है, किंतु केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका घन केवल ज्ञान से अधिक हो जाता है। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, क्या बताया यहाँ पर, इस धारा में कौन सी धारा है, घन मातृक धारा, जिनका घन कर सकते हैं वो है घन मातृक धारा। ये द्वितीय वर्गमूल का अर्थ समझते हैं नितिन भाई, किसी संख्या का द्वितीय वर्गमूल, हमारे पास 16 है, 16 का प्रथम वर्गमूल क्या है 4, इसको हम 16 का प्रथम वर्गमूल कितना है, तो 4 है, वर्गमूल का वर्गमूल उसको कहेंगे द्वितीय वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2 होगा, तो 2 संख्या क्या है, 16 का द्वितीय वर्गमूल है। यहाँ तो बात है, हमारे पास यही है ना, जो हमने ये बात देखी थी यहाँ पर सोलह के बारे में हम देखेंगे। ये अपने पनटी का ही उदाहरण ले लेते हैं, 65536। उसका प्रथम वर्गमूल कौन सा है? 256, और उसका वर्गमूल 16। तो यहाँ क्या कहते हैं, द्वितीय वर्गमूल जो है उसका घन हो सकता है। द्वितीय वर्गमूल का घन कैसे निकालना? द्वितीय वर्गमूल है ना, द्वितीय वर्गमूल का घन कैसे निकालना? द्वितीय वर्गमूल को तीन बार गुणा करने, यानी ये द्वितीय वर्गमूल हम ऐसा कहें, या द्वितीय मूल दिखेंगे, द्वितीय वर्गमूल इंटू द्वितीय वर्गमूल इंटू द्वितीय वर्गमूल, द्वितीय वर्गमूल गुणा द्वितीय वर्गमूल प्रथम वर्गमूल होगा, प्रथम मूल इंटू द्वितीय मूल, ये उसकी संख्या आएगी। द्वितीय वर्गमूल गुणा द्वितीय वर्गमूल प्रथम वर्गमूल होता है। प्रथम वर्गमूल को द्वितीय वर्गमूल से गुणा करेंगे तो द्वितीय वर्गमूल का घन आ जाएगा। यहां तक बात ख्याल में? तो कहते कि द्वितीय वर्गमूल का तो घन हो सकता है, अपनी संख्या में देख लो, पनट्ठी में डिराइव करके देखो। पनट्ठी का द्वितीय वर्गमूल है 16, 16 का घन है ना, 16 गुना 16 गुना 16, यानी इसका घन तो हो सकता है, क्योंकि हमारी तो 40 तक के घन संख्या हो सकती, तो 16 का तो घन हो सकता है। यहाँ यही बात लिखा है, इस धारा में केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल तो पाया जाता है, क्योंकि उसका घन केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से गुणित द्वितीय वर्गमूल होता है। यही हमने करके दिखाया, क्यों होता है? द्वितीय वर्गमूल गुणा द्वितीय वर्गमूल प्रथम वर्गमूल, और उसको एक बार द्वितीय वर्गमूल से गुणा करेंगे तो हमको वो घन रूप संख्या मिलेगी। तो वो तो ये घन मात्रक धारा में आता है, यानी 16 गुना 16 गुना 16 हो सकते हैं, क्योंकि उसका उत्तर कितना आता है? कैसे आएगा? चार बार 16 गुना करते तो आता है वो 65536, ये 256 गुना 16 हो जाता है, ये 256 इंटू 16 हो जाते हैं। हाँ, 66 96, 16 85 99 91, चले 8, 16 32 48, 4096, 4096, ये उसका 16 का घन आया, यानी वो तो संख्या छोटी है, यानी इसका तो घन हो सकता है। पर क्या आगे क्या बताया? परंतु केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल नहीं पाया जाता, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल का घन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रथम वर्गमूल गुणा प्रथम वर्गमूल के तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा, तो उसको और एक प्रथम वर्गमूल से गुणा करेंगे तो कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस धारा में, यानी घनमात्रक धारा में, केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल तो आता है, उसका तो घन हो सकता है, परंतु प्रथम वर्गमूल नहीं हो सकता, उसका घन नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। यानी इसके स्थान कितने हैं? तो आसन्न घनमूल प्रमाण है 140 हमारी संख्या में, यहाँ जो उदाहरण लिया है उसमें, ये घन मातृक धारा हुई। अभी पढ़ने से पहले ये नक्की करते हैं, प्रेरणा बिना बताना, अघन मातृक धारा में कौन सी संख्याएं लेंगे हम?
40 के बाद।
हाँ, चल, उसको आपको स्टेटमेंट करना है, तो आसन्न घनमूल के ऊपर की सभी संख्या है, कहाँ तक की? केवल ज्ञान तक की, उनका घन नहीं हो सकता। हमारे उदाहरण में 41 से लेकर 65 तक वो सारी कितनी होगी, क्या कहेंगे उसको? अघन मातृक धारा। ख्याल में आई नहीं बात? अभी इसको पढ़ेंगे, देखो, अथ अघन मातृक, अथा लिखा है ना, अथा करते अथ प्लस अघन, अथ अघन मातृक धारा उच्चते। अब 65 नंबर का हम पढ़ेंगे। तमरूव सहित आदि केवलम अवसान अघन माउस आसन्न घन पदूनम केवल नाणम हवे ठाणम तत्रूप सहितम आदि केवलम अवसान अघन मातृकाया आसन्न घन पदोनम केवल ज्ञानम भवे स्थानम। देखो घन मातृक धारा के अंतिम स्थान में एक अंक मिलाने से, यानी जिसको हमने आसन्न घन मूल कहा था ना उसकी बात है, उसमें एक मिला दो, यानी हमारी संख्या में 40 में एक मिलाकर 41 हो जाएगी। अंक मिलाने से अघन धारा का प्रथम स्थान होता है, वहां बताए ना तम रूव सहितम आदि, रूव यानी एक, उसमें एक मिलाकर जो संख्या होगी वो आदि, वहां से शुरू होगा। और केवलम अवसानम अघन माउस, और कहाँ तक है तो केवल ज्ञान पर्यंत, समस्त स्थान अघन धारा रूप ही है। इस धारा के स्थान आसन्न घन मूल रहित केवल ज्ञान प्रमाण होते हैं। यानी का ना आसन्न घन पदूनम, आसन्न घन पद है यानी उस जिसका वो आसन्न घन किया था उस संख्या से हीन करना किसको, केवल ज्ञान को, इतने स्थानों की संख्या हो जाएगी। इसी का विशेषण, जिन संख्याओं का घन करने पर घन रूप संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, वे सर्व संख्याएं इस अघन मातृक धारा में ग्रहण की गई। घन मातृक धारा के अंतिम स्थान 40 में यह हमारी संदृष्टि चल रही है, एक अंक मिलाने पर 41 इस धारा का प्रथम स्थान बनता है। इस प्रथम स्थान से लेकर केवल ज्ञान पर्यंत सभी संख्याएं इस धारा के स्थान हैं, जैसे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये आगे बढ़ो एक एक से, अंत में जाके रुकना है 65 तक, 65,534, 65,535 और 65,536, ये सारे क्या कहलाते हैं, अघन मातृक धारा, इनका घन नहीं हो सकता। केवल ज्ञान स्वरूप 65,536 में से आसन्न घन 64,000 का प्रथम घनमूल 40 घटाने पर इस धारा के 65,496 स्थान बनते हैं, उसी में से हमने 40 घटा दिए।
यह तो रियलिटी में भी घन मातृक धारा के स्थान ज्यादा है और घन मातृक धारा के स्थान कम कंपैरेटिव
नेचुरली, बहुत बड़ा अंतर है। कितना अंतर, अनंत गुणा का अंतर होगा। ये तो पनट्टी प्रमाण में 40 ही अघन घन मातृक है और बाकी सब 41 से लेकर पनट्टी तक सभी अघन है, तो केवल ज्ञान में कैसा होगा इमेजिन करो। वही तो, हाँ तो अनंतों में ही होगा ना फर्क, ही अनंतों में अनंत गुणा का डिफरेंस होगा उसमें। केवल ज्ञान के आधे नहीं, आसन्न घन जो है आधे से ज्यादा वो तो अनंतों में है, उसका घनमूल भी अनंत होगा। कितने अनंत गुणे अनंत, वो अनंत गुणे अनंत हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। 40 से 65 जो है अभी 65,000 समझो ना, 65,400 कितने गुने हैं,
ये तो छोटी संख्या में तो ये
40 से 40 गुने तो है कि नहीं, 40 से 40 गुना है कि नहीं, 40 को 40 गुना करो कितना होगा, खाली 1600 आते हैं और ये तो 65,000 की बात है। ख्याल में आती है ना, बिल्कुल होगा। हाँ आगे, केवल ज्ञान स्वरूप 65,536 में से आसन्न घन 64,000 का प्रथम घन मूल 40 घटाने पर इस धारा के 65,496 स्थान बनते हैं। इस धारा में जघन्य संख्या से लेकर जघन्य अनंतानंत तक का कोई भी स्थान नहीं है। ये कुछ इसमें गड़बड़ी लगती मुझे, इसका अर्थ कैसे लगाना?
भजनीय है तो क्या हो सकता है? और
अच्छा अच्छा, कोई भी स्थान नहीं है, सॉरी। हाँ, जैसे हमने ऊपर बताया था ना, 200 अर्धच्छेद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यानी वो सारे वो घन मातृक में आते हैं, उनका घन हो सकता है। आपके प्रश्न का उत्तर आया इसे क्या है, इस धारा में जघन्य संख्या से लेकर एक से लेकर, अभी एक भी ले लो ना, दो ले लो, एक ले लो, कोई भी ले लो, अघन मातृक में वो नहीं है ये कहना चाहते, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, कुछ भी ले लो उसमें, यानी सभी संख्यात संख्या तो इस धारा में नहीं है, क्योंकि सबका घन होगा, सभी असंख्यात उसका घन हो सकता है, जघन्य अनंतानंत तक का कोई भी स्थान नहीं है, यानी जघन्य अनंतानंत का भी वो घन होगा, ये तो कहना चाहते
हैं।
वो घन मातृक में आएंगे, अघन मातृक में नहीं है, यानी उनके घन होते हैं, बस ये कहना चाहते हैं, यानी जघन्य अनंतानंत का भी घन होगा तो वो भी घन मातृक में है, अघन मातृक में नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो उत्कृष्ट अनंत अनंत है, क्योंकि उत्कृष्ट अनंत अनंत केवल ज्ञान, तो अघन मातृक में तो अघन, हाँ तो कहते जघन्य अनंत अनंत, तो हमने 21 भेद किए थे, हाँ 19वां नहीं लेना है परिता, अच्छा अनंत अनंत में, हाँ अनंत अनंत में बराबर। तो कहते उत्कृष्ट अनंत अनंत तो है ही, जैसे हमने यहाँ पनट्टी को लिया, किंतु मध्यम अनंत अनंत भजनीय है, मध्यम अनंत अनंत के ऊपर ऊपर के स्थान नहीं है, यानी देखो हम बात किसकी चल रही है, अघन मातृक की, तो अघन में वो पहले पहले स्थान नहीं है, ऊपर के है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये आसन्न घनमूल कितना है, तो मध्यम अनंत अनंत का भेद है, ख्याल में आई ना बात, वो अनंत है कि नहीं आप पूछ रहे थे, तो आगे तो कितने अनंत अनंत हो गए,
और ये मध्यम अनंत अनंत है, उससे भी ये अघन मातृक धारा बड़ी है,
अनंत गुणा है,
अनंत गुणा है, तो जो हम
बापरे क्योंकि हमने उसमें कितने बार शलाकात रह किए, तो भी वो राशि कूटी ने फिर भी केवल ज्ञान में माइनस किया और फिर ऐड कर दिया, यही कह रहे हैं यहाँ पर। यानी आसन्न घनमूल भी मध्यम अनंतानंत का कोई विशिष्ट भेद है, उसके ने आगे वाले स्थान अघन मातृक में आ जाएंगे, और अंतिम जो है घनमूल, आसन्न घनमूल, वो घन मातृक में आएगा, उसमें एक ऐड कर दो, उस वहां से लेकर अघन मातृक में आ जाएंगे। यहाँ लिखा मध्यम अनंतानंत भजनीय है, केवल ज्ञान, वो तो उसके तो घन हो ही नहीं सकेगा, वो तो हमारा अंतिम स्थान है। हाँ हाँ, यानी घन मातृक धारा में कितने स्थान है, जैसे हमने 40 देखे थे घन मातृक में, हमने अपने उदाहरण में 40 स्थान देखे थे, तो यथार्थ में कितने हो गए, तो मध्यम अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, कोई एक विशिष्ट भेद उसमें से, कि उसके आगे वाले बहुभाग प्रमाण तो अघन धारा में चले जाएंगे, पर मध्यम अनंतानंत का कोई एक ऐसा भेद है कि जिसका घन हो सकता है। वही तो उसका अंतिम स्थान है। तो आसन्न घन मूल ही कौन सा होगा, तो मध्यम अनंतानंत होगा। यथार्थ में आसन्न घन मूल मध्यम अनंतानंत प्रमाण है। हाँ, जो ऊपर के अनेक स्थान है अनंत स्थान, वो तो अघन मातृक में गए। यानी मध्यम अनंतानंत का कोई एक नीचे वाला स्थान है, वो घनमूल घनमूल घन नहीं आसन्न घनमूल 40 की जगह उसको रखना है। और अघन मातृक में मध्यम अनंतानंत के ऊपर सारे, वो भी कितने अनंतानंत स्थान हो गए, है ना। हाँ हाँ बराबर है, आसन्न घन मूल के ऊपर केवल ज्ञान तक सभी स्थान अघन मात्र के मध्यमान अनंत का बहुभाग होगा। अब आगे देखते हैं, ये तो हमने 11 धारा यानी अलग अलग धाराएं देखी, 10 हुई कि 11 हुआ, 11 हो जाएगी ना, कौन गिना है, गिनाओ गिनाओ, पहली कौन सी,
समधारा,
सर्वधारा,
सर्वधारा, समधारा,
विषमधारा,
हाँ, कृति धारा, अकृति धारा, घन धारा, अघन धारा,
कृति मातृक जिसको वर्ग मातृक भी कहा था, हाँ, अकृति मातृक, बहुत अच्छा, ये 11 हो गए। अभी 3 धारा है, वो धाराएं कैसी है, वो वर्ग स्थान में होती है, वर्ग का वर्ग का वर्ग ही करना, वो सारे ही वर्ग धाराएं हैं, परंतु वर्ग धारा है, परंतु स्टार्टिंग जो संख्या है वो अलग अलग है, करना तो वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग एक होगी, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप यानी दो, दो का वर्ग है 4, उस वर्ग स्थान में पहला स्थान है 4, फिर 4 का वर्ग, 4 भी वर्ग रूप संख्या है, 4 फिर 4 का वर्ग, फिर उसका वर्ग, फिर उसका वर्ग, फिर उसका वर्ग, ये द्विरूप वर्ग धारा। क्या दो बार,
दो पहला नहीं देने का, 4 देने का,
दो का वर्ग, द्विरूप, द्विरूप का वर्ग, अभी वर्ग वर्ग वर्ग, पर स्टार्टिंग फिगर 4 है। अभी द्विरूप घन धारा, दो रूप का घन है 8, 8 से नहीं शुरुआत हुई, 8 का वर्ग,
8 से शुरू हो गया, 8 का वर्ग,
8 ये वर्ग स्थान नहीं है, जैसे 2 ये वर्ग स्थान नहीं था, 4 वर्ग स्थान था, तो यहाँ 8 का वर्ग है 64, वो वर्ग स्थान में पहला स्थान 64 है, वो पूरी धारा में 8 से अगर शुरू करते हैं तो 64 सेकंड स्थान पर चला जाएगा, परंतु वर्ग स्थान को काउंट करेंगे, वर्गशाला का काउंट करेंगे तो 64 का नंबर एक है। अब द्विरूप वो द्विरूप घन धारा, पहला स्थान ही 64, फिर 64 का वर्ग उसका वर्ग, आठ का वर्ग घन नहीं, अभी आगे वर्ग ही निकालने, घन नहीं करने आगे, आगे वर्ग ही करने हैं। घन दो का घन आठ है और आठ का वर्ग से शुरू करना। पहले हमने दो के वर्ग से शुरू किया था, 4 16 256 वर्ग धारा, अभी दो रूप का घन करना और घन का वर्ग करना और आगे वर्ग वर्ग करते चले जाओ। द्विरूप घना घन, दो का घन है आठ, आठ का घन है 512 का वर्ग लेना
वो पहला,
और फिर उसके वर्ग करते चले जाना का वर्ग। पांच सौ बारह अगर लिखेंगे, परंतु वर्गशाला का हम 512 को नहीं लेंगे, वर्गशाला
का वर्ग को,
वर्ग को उसका पहला स्थान कहेंगे, घना घन, क्योंकि 512 ये वर्ग रूप स्थान नहीं है, 512 ये घन है वर्ग नहीं है। पांच सौ बारह का वर्ग वो कुछ आएगा 200,000 वगैरह कुछ। क्योंकि उसमें है ना वो धारा का प्रथम स्थान कहीं कहीं क्या किया है, आठ को पहला स्थान कहा है, और वर्ग स्थान में अगर वर्गों का स्थान गिनना है तो आठ का वर्ग 64 को पहला स्थान गिना,
सलाका
64 से चालू होगी, वर्गशाला का 64 से चालू
होगी।
हाँ, 512 का वर्ग कहाँ मिला आपको? हाँ, उसकी संख्या बताई होगी ना, मैंने बोला ना 200,000 कुछ होगा, मुझे 200,000 याद था, पूरी संख्या याद नहीं थी, पर 200,000 समथिंग था, इतना तो याद था मुझे। हाँ मिला, 69 पर भी है, 262,144 वहाँ से शुरू हो जाएगी। हाँ, उसकी शलाका एक हो जाएगी। अभी हम ये द्विरूप वर्ग धारा से शुरू करते हैं। मैंने पहले इसलिए बताया है कि सारी ही वर्ग धाराएं, तीनों ही वर्ग धाराएं, एक वर्ग में दो के वर्ग से स्टार्ट करना है, एक में दो के घन के वर्ग से स्टार्ट करना है, और तीसरी में दो के घन का वर्ग करो, वो उसकी पहली राशि होगी। 200,000 आपने अभी पढ़ा है ना,
62,144
वो पहली प्रथम वर्ग राशि होगी, प्रथम वर्गशाला का, और उसके वर्ग करते चले जाओ आगे। हाँ बहुत है तो, हाँ क्योंकि उसको घना, देखो नहीं नहीं वो आगे उसमें बहुत सारी फिगर्स बताए, घनांगुल कहाँ आता है, जगत श्रेणी कहाँ आती है, वो सारे आगे चले कर बताते रहेंगे हमको। अभी ये तो बाद में आने वाली बात है, पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ किसका वर्ग करना है। यहाँ दो का वर्ग से स्टार्ट करना है, यहाँ आठ के वर्ग से स्टार्ट करना है, और यहाँ 512 के वर्ग से स्टार्ट करना है। तो इसमें पहला वर्ग स्थान है 4, यहाँ 64 और यहाँ 262,144। अभी जिस धारा में पहली वर्गशाला का की स्थान देखना, कहीं कहीं धारा का स्थान 8 64 ऐसा भी गिना है, उसका भी यहाँ कंसीडर नहीं मत करो, केवल वर्गशाला का स्थान देखो। 4 की वर्गशाला का एक है, तो जो द्विरूप घन धारा में है उसका प्रथम स्थान है, उसमें 4 का घन आता है, और ये 262,144 है वो 4 के घन का घन है। जो 512 का हमने इसका घना घन करके हमने इसका वर्ग किया, ये 2 का डायरेक्ट वर्ग किया 4, दो के घन का वर्ग किया 64, वो चार का भी डायरेक्ट घन आता है, ये वर्गरूप संख्या है सभी। चौसठ का घन ये है, जो 512 का वर्ग था वो चौसठ का घन है, गुणा चौसठ गुणा चौसठ इतना आ जाएगा। हाँ, ये दो के घन का घन है। अभी उसके जो वर्ग राशियां करेंगे उनमें भी उस वर्ग का घन इसमें आए। जैसे इसमें दूसरा स्थान आता है 16, तो यहाँ 16 का घन आ जाएगा 4096, और घनाघन में उसी का घन आ जाएगा। जैसे जिस स्थान पर हम यहाँ अंगुल आता है, पल्ले तो आते ही बीच में अंगुल आएगा, तो यहाँ घनांगुल शायद अंगुल इसमें आता है कि इसमें आता है मालूम नहीं मुझे। जैसे जगत श्रेणी तो इस धारा में आती है, और जगत श्रेणी का घन लोग जो है वो घनाघन धारा में आता है। आगे चलकर ये सारी फिगर्स बताएंगे। हमें यही लेना है द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान पर जो संख्या है उसी वर्ग स्थान पर द्विरूप घन धारा में उसका घन आएगा, और घनाघन में उसी का वो घन का भी घन आएगा।
तो यहाँ पे अंतिम स्थान किस पे सबसे बड़ा है, द्विरूप वर्ग धारा में और घन धारा में और घनाघन धारा में अंतिम स्थान है वो द्विरूप वर्ग धारा में।
पनट्टी पर घटित करो, यहाँ अंतिम स्थान, यहाँ कितने स्थान है पनट्टी तक लेना है ना, 4, 16, 256 और पनट्टी। तो पनट्टी का घन होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा,
नहीं होगा ना, नहीं होगा, बराबर है ना। तो उसके प्रथम वर्गमूल का घन हो सकता है?
नहीं,
अभी हमने पढ़ा था
नहीं,
उसका घन नहीं हो सकता है। द्वितीय वर्गमूल का, द्वितीय वर्गमूल का घन हो सकता है, तो इसका घन हो जाएगा। इसका घन कितना? 4096, और उसका वर्ग कितना होगा?
नहीं, उसका घन कर रहा है ना,
नहीं
उसका वर्ग कर रहा है तो वो
देखो 256 गुना 256 पनट्टी आती है। हाँ। इसका घन तो नहीं हो सकता
नहीं,
तो दो स्थान पहले ये रुक जाएगी, ये धारा दो स्थान पहले रुक जाएगी।
अच्छा, ये स्थान दो स्थान पहले रुक जाएगी।
हाँ। इसका घन भी करने जाओ तो ये इसको एक्सीड कर देगा। बस तो वो बात आएगी कितने स्थान पहले वो रुकेगी करके। इसका घन कह रहेंगे तो कितना होगा? देखो ये संख्या क्या है, 16:3 है, और उसका घन करने जाए तो यहाँ 16:9 हो जाएगा। तो 16:4 करेंगे तो पनट्टी आती है, ख्याल में आती है? तो घनाघन और पीछे चला जाएगा, वो तो जरा आगे की बाद में सोचेंगे ना, अभी यहाँ इतनी सोचने दो। अभी तो द्विरूप वर्ग धारा को स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ग करेंगे तो ये कितना बड़ा आ जाएगा।
आपने वर्ग किया कि घन किया?
हाँ, नेचुरली, क्योंकि वो 256 का वर्ग होता है, 256 का घन होता है, सॉरी 4096 का वर्ग मीन्स 256 का घन। हाँ, उसका वर्ग, वर्ग किया आपने। हाँ, उसका वर्ग कितना बताया आपने? 16 6 1 1 6 6 ना पहले,
नहीं
1 6 7 7। हाँ, फिर तीन बार का, 2 बार 7, हाँ फिर
2 1 6।
हाँ, तो कितना आ जाएगा देखो, इतना है जो 256 का घन होता है। 256 का घन कितना होगा? पनट्टी मल्टीप्लाई बाय 256, हाँ ये इसका 4096 का, ये 200000 हमने जो लिखा ना इसका वर्ग हो जाएगा।
हाँ, तो वो कितना
6 8 7 1 9 7 1 9 4 7 6 4 7 6 7 3 6 7 3 6 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 डिजिट प्रमाण हो जाएगी। हाँ तो कितना, हाँ इतना होता नहीं, इतनी संख्या बड़ी बड़ी होती है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, पनेटी को क्रॉस करके चला जाएगा। देखो हाँ 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 बड़ा कैलकुलेटर रखना अभी वहाँ तो हाँ नहीं आएगा, यानी वो केवल 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 ज्ञान के दो स्थान पहले ही वो रुक जाती है संख्या। उस धारा का अंतिम स्थान केवल ज्ञान जो जिस स्थान पर जिस वर्गशाला का है यानी उसकी वर्गशाला का केवल ज्ञान की वर्गशाला का में से 2 कम हो जाती है। यहाँ हमने पनट्ठी को चौथे स्थान पर देखा है और 4096 हमारा दूसरे स्थान पर आया है द्विरूप घन धारा में, ये चौथे स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पर है। यानी केवल ज्ञान की जो वर्गशाला का है उसमें इससे वर्गशाला का 2 स्थान कम है, ऐसे करना है। एक्चुअल में भी ऐसे 2 स्थान कम हो गए उसके, आए आने वाला है, ये हमने पढ़ा था जीवकांड में। और हमारे पास कितने पत्र भी आए कि हमें नहीं समझ रहा है ऐसा है वैसा है, क्योंकि क्या है द्विरूप वर्ग धारा में हमने देखा द्विरूप घन धारा में कभी कभी लिखते पहला स्थान 8 है और दूसरा स्थान 64 है और फिर कथन करते समय बताया कि जिस स्थान पर यह है उस स्थान पर उसका घन आना चाहिए, तो उनका कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं नहीं क्योंकि इस धारा में वर्ग स्थान पहला वर्ग स्थान 64 है, कभी कभी धारा का पहला स्थान 8 गिनते हैं और 64 तो वर्ग स्थान में पहला है, तो उसकी अपेक्षा से कथन 2 अलग अलग आते हैं। 8 पहला लिखा है परंतु वो धारा का पहला स्थान बताए वर्ग का पहला स्थान नहीं, इसलिए कथन में जो डिफरेंस वहीं पर जो था उसके बारे में लोगों किसी के ऐसे पत्र हमारे पास बहुत आते हैं ना, तो कहते मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उनको बताए कि अरे ये तो ख्याल भार हो गया है, यानी अच्छे गणित के जानकार थे वो भी पूछने वाले। द्विरूप एक तो द्विरूप है, एक द्विरूप का घन है 8 और द्विरूप का घना घन है 512। अब ये तो हम रखेंगे, इसके वर्गों से वो धारा शुरू होती
है।
हाँ जैसे द्विरूप वर्ग धारा में पहला स्थान हम 4 गिनते हैं वर्ग स्थान वर्गशाला का उसकी 1 है, वैसे द्विरूप घन धारा में वर्गशाला का 1 वाली कौन सी संख्या है, तो 64 है। तो कभी कभी धारा का पहला स्थान 8 गिनेंगे परंतु वो वर्ग का पहला स्थान 8 नहीं है, वर्ग का पहला स्थान 64 है। वो तो अभी बात अपनी शुरू नहीं हुई, अभी हमने द्विरूप वर्ग धारा भी नहीं देखी है, ये तो आगे की चर्चा चल रही है। अब हम यहाँ पुस्तक के आधार से अपनी चर्चा बढ़ाएंगे आगे। 59 पृष्ठ पर है अपनी बात, नीचे हम 66 नंबर की गाथा पढ़ने जा रहे हैं। अथ द्विरूप वर्ग धाराम गाथा सप्तकेन आह, यानी अभी द्विरूप वर्ग धारा का कथन 7 गाथाओं के द्वारा बताएंगे। ये अधिकतर इसी धारा की चर्चा आती है, इसी के बहुत बार हमको क्योंकि इसमें से बहुत सारी बातें आती है ना वो कैलकुलेशन के लिए पढ़ेंगे। बेरुव वग धारा 64 सबे सदस ही 56 पन्नठी वादालम एकठम पूव पूव करी विरूप वर्ग धारा 44 द्विशत सहित 56 पन्नठी द्वा चत्वारिंशत एकाष्टी पूर्व पूर्व कृति। ये कहते ये पूर्व पूर्व कृति है ने पूर्व पूर्व संख्याओं के वर्ग है, कृति यानी वर्ग, पहले पहले का वर्ग है। देखो संस्कृत में देखो द्विरूप वर्ग धारा ये द्विरूप वर्ग धारा के स्थान पहले बताए उन्होंने, चतवार यानी चार, षोडश यानी सोलह, द्विशत सहित षट पंचाशत, षट पंचाशत यानी छप्पन, और वो कैसे द्विशत सहित, 200 सहित, 200 प्लस छप्पन यानी 256, फिर पन्नटी, फिर द्वाचत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत यानी 42 आदि यानी वो बादल, और एकाष्टी, एकाष्टी यानी एक आठ वगैरह, इकट्ठी जिसको हम कहेंगे इकट्ठ, पूर्व पूर्व कृति, पूर्व पूर्व स्थान के पश्चात पश्चात वाले वो उसके वर्ग वर्ग है, यानी चार से शुरू होकर उसका वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग, ये सारे उन्होंने ऐसे छह स्थान बताए इकट्ठी तक के, यानी चार, सोलह, 256, फिर पन्नटी, फिर बादाल और उसके इकट्ठी। अब 60 पर आते हैं, पृष्ठ संख्या 60। सात गाथाओं द्वारा द्विरूप वर्ग धारा का कथन करते हैं। ये हमारे 14 धाराओं में से 12वीं नंबर की धारा, इसलिए यहाँ 12 संख्या आंकड़ा दिया उन्होंने। गाथार्थ, इस द्विरूप वर्ग धारा में दो के वर्ग से प्रारंभ कर पूर्व पूर्व स्थानों का वर्ग करते हुए उत्तर उत्तर स्थान प्राप्त होते हैं। इस धारा का प्रथम स्थान 4 है, इसका वर्ग 16, फिर 256, उसके बाद पन्नटी जिसको कहेंगे 65,536, उसके बाद बादल यानी उसके पहले दो संख्या लिखकर एक्सेट्रा आदि लिख दिया, प्रभृति जिसको कहेंगे, तो 42 लिख के आधे आगे दो लाइन, उसका अर्थ थे वो बादल, यानी वो संख्या 42 से शुरू होती है, ये उसकी संदृष्टि बनाती, और इकट्ठी, इकट्ठी में फिर एक आठ आदि, तो वहां से शुरू होती है जो पूर्व पूर्व का वर्ग है। अब इसी का विशेषांक, द्विरूप वर्ग धारा में दो का वर्ग 4, यह प्रथम स्थान है। द्विरूप वर्ग, केवल रूप कहेंगे या रूप कहेंगे तो उसका अर्थ होता है एक संख्या, द्विरूप यानी दो और उसका वर्ग 4, ये पहला स्थान, 16 द्वितीय स्थान है, इसी प्रकार 256 तीसरा, पन्नटी पंचसया छत्तीसा, ये पन्नटी यानी 65,000, पंचसया ने 536, ये चौथा स्थान, बादालम चौ नऊदी छन नऊदी बिहत्तरीय छन नऊदी, क्या कहते हैं ये पूरी संख्या बताई, बादल मैंने 42, चौनवदी, चौनवदी का अर्थ होता है 94, यानी बादल चौनवदी छन नऊदी यानी 96, फिर बिहत्तरीय 72 और छन नऊदी, यानी पूरा टोटल कैसे है उनको कहते हैं बादल यानी 42, 94, 96, 72 और 96, 42, 94, 96, 72 और 96, ये पूरी बादल की संख्या है, हाँ 10 डिजिट, ये पांचवा स्थान है। तथा एकट्ठम च चौ छ सत्तयम च च य शून्य सत्तय सत्ता शून्यम नव नव पंचय एकम छक्के कगो ये छक्कम च, इतने में वो सारी संख्या उन्होंने याद कराई, क्या कहते हैं क्या कहते इकट्ठम यानी इकट्ठ यानी 18, च च ऊ यानी 4 और 4, फिर छ सत्तयम छ फिर 7, च च यानी 4 4, च च यानी 4 4 हो गए, फिर शून्य शून्य आया, सत्तय सत्ता सत्तय फिर सत्ता, 7 3 और 7, फिर शून्यम नव नव पंचय शून्य 9 नव पंचय शून्यम नवा नवा पंच है लिखा है, दो बार पंच, दूसरी संख्या निकाल के देखनी पड़ेगी इकट्ठी की। जरा आप जीवकांड दे दो, फिर एकम छक्के कगो छ एकगो, ये छक्कम च। आपने वैसा ही लिखा है क्या पुरानी पुस्तकों में, नवी पुस्तकों में?
यार पे पांच दो बार लिखा है, यार पे नौ दो बार, नौ नौ पंच
लिखा का बराबर है, परंतु संख्या में यही ऐसा ही लिखा है क्या? मेरे में गलती है, उन्होंने लिखा है परंतु बता कुछ अलग रहे हैं।
बता सोलह नवा नवा, नहीं नहीं सोलह नवा नवा है तो नौ दो बार आ रहा है।
उन्होंने नवा नवा लिखा है ना, छ सत्यम चच य शून्य सप्त य सत्ता शून्यम नव नव पंचय। हाँ वो बताओ क्या लिखा है, वो बराबर है, नवपण होना चाहिए, नौ और फिर पांच पांच, ठीक है। पंच के लिए पंच भी कहते हैं और पण भी कहते हैं, हाँ यही, इसीलिए वो गलत हुआ है वहाँ पर, नौ पांच पांच होना चाहिए, वही बोला कुछ गलती है यहाँ पर। नव पण पंच सुन्नम नव नव है मेरे में, आप में बराबर है, सुन्नम नव पण चाहिए आप में तो ठीक है, हमारे पुराने में सुन्नम नव पण पंचय अभी बराबर है। ये पण का भी अर्थ होता है
पांच,
जैसे पन्नट्ठी में लिया ना हमने। पन्नट्ठी भी कहा फिर पंच सया छत्तीस भी कहा, वो बराबर है वहां पर। ये हो गया इकट्ठी छठा स्थान है। इस प्रकार उत्तरोत्तर राशि पूर्व पूर्व राशि के कृति स्वरूप होती है, यानी वर्ग स्वरूप होती है। किसमें? हाँ राशि ना 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 ना, चार ये स्वयं वर्ग स्थान है।
वर्गशाला का चार से चालू होगी ना,
चार ये पहला वर्ग स्थान है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं नहीं है। उन्होंने ऐसा लिखा कि चार ये पहला स्थान और वर्ग स्थान पहला सोलह, ऐसा नहीं है, वर्ग स्थान ही है चार, क्योंकि दो का वर्ग है चार, दो के वर्ग से ही वो स्थान चालू होती है राशि। ये कंफ्यूजन आठ के उसमें आ सकता है। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे विशेष आप में। इकट्ठम च चऊ च चऊ, च का भी अर्थ चार और चऊ का अर्थ भी चार, छ सप्ताह यानी छ सात, च चय यानी चार चार फिर दो बार, शून्य सप्त यो सप्ता, ये बराबर है ना? वो ये ऐसा ही कुछ जैसे चऊ लिखा वैसे चय, वो तो हाँ ठीक है ना, ये यानी और के भी अर्थ में हो सकता है, ये उनको गाथा पूरी करनी थी या लिखने से संख्या, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है। हमने पढ़ा ऐसा ही था ना, अभी नई पुस्तकों में ऐसा ही है ना। अब सड़सठ नंबर की गाथा पढ़ेंगे अभी। तो संकटान गमने वग्गसला गद्ध छेद पडम पदम अवर परिता संकम आवलि पदरावली अहवे ततः संख्यस्थान गमने वग्गशलाकार्धच्छेद प्रथम पदम अवरपरीता संख्यम आवलिः प्रतरावलिः च भवेत्। यहाँ क्या कहते हैं, ततः संख्य स्थान गमने, संख्यात स्थान जाने पर वर्गशला का अर्धच्छेद और प्रथम पद यानी प्रथम वर्गमूल किसके, अवर परिता संख्यम जघन्य परिता संख्यात के। देखो क्या कहते हैं, वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वो पहले तो संख्यात राशियों में हो जाएगा, आगे चलकर तो असंख्यात राशि शुरू होने वाली है, परंतु असंख्यात वो संख्या का जो अर्धच्छेद है वो संख्यात राशि में आ जाएगा, जो मिनिमम संख्या असंख्यात है उसके अर्धच्छेद तो संख्यात में आ जाएगा, उसका प्रथम वर्गमूल भी संख्यात राशि में आ जाएगा। यही कहना चाहते हैं कि अवर परिता संख्यात यानी जघन्य परिता संख्यात का क्या क्या, वर्गशाला का यानी कौन से स्थान वर्ग स्थान पर है उसको कहेंगे उसकी वर्गशाला का, वो भी संख्यात और वो भी इसी धारा में आते हैं। द्विरूप वर्ग धारा में जघन्य परिता संख्यात की जो वर्गशाला का राशि है वो भी आती है, जैसे हमने देखा ना पनट्टी की वर्गशाला का कितनी है, चार है, वो भी हमारे द्विरूप वर्ग धारा में है। उसके अर्धच्छेद कितने हैं, सोलह, वो भी इसी धारा में है। उसका प्रथम वर्गमूल 256, वो भी इसी धारा में है। ख्याल में आई बात, सभी के ऐसे इसी धारा में नहीं हो सकते, जैसे 256 के अर्धच्छेद कितने हैं, आठ, वो इस धारा में नहीं है। 256 की वर्गशाला का कितनी है, तीन, वो इस धारा में नहीं है, परंतु उसका प्रथम वर्गमूल तो इस धारा में होगा ही। ख्याल में ना, तो सभी संख्याओं के लिए ये लागू नहीं हो रहा है। यहाँ क्या कहा उन्होंने, जघन्य परिता संख्या की जो संख्या है वो तो इस धारा में होगी होगी, उसका प्रथम वर्गमूल भी होना ही है क्योंकि उसका वर्ग करने पर जघन्य परिता संख्या आया, तो जघन्य परिता संख्या की वर्गशाला का भी इसी राशि में धारा में आने वाली। ये ख्याल में आ रही का नहीं बात, वर्गशाला का अर्थ क्या होता है, द्विरूप वर्ग धारा यहाँ से चार से लेकर हम लिखेंगे अंतिम स्थान है केवल ज्ञान, कौन से नंबर स्थान, वर्गों का नंबर लगाएंगे एक दो तीन चार, तो पहले नंबर पर चार है, दूसरे नंबर पर सोलह है, तीसरे नंबर तो 256 है, चौथे नंबर पर पनट्टी है, वो एक दो तीन चार जो हमने गिने ना वो है उसकी वर्गशाला का। उसके अर्धच्छेद ने कितने बार दो को गुणे करने पर वो संख्या आती है उसको कहेंगे उसका अर्धच्छेद, और वर्गमूल तो मालूम है आपको। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं जघन्य परिता संख्यात नाम का जो मिनिमम असंख्यात है उस वहां से तो असंख्यात शुरू हो गया, तो उसका प्रथम वर्गमूल क्या है, उसके पहले वाला स्थान होगा, वो तो उस राशि में है ये धारा में है। उसके अर्धच्छेद यानी कौन से स्थान पर वो जघन्य परिता संख्यात आने वाला है, कोई विशिष्ट संख्यात संख्या है वो, तो कहेंगे वो भी इस धारा में है। ख्याल में आई बात,
अर्धच्छेद यानी दो को कितनी बार गुणा करेंगे वो भी इसमें आएगा,
वो भी इसमें आएगा। ये तो उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया कि उनको मालूम है कि जघन्य परिता संख्यात के वर्गशाला का भी इस द्विरूप वर्ग धारा में है कहीं पर, हम मान लेते हैं ना 256 संख्यात में ही आएगी, जैसे 256वें स्थान पर हम मान लेते फॉर एग्जाम्पल 256वें स्थान वर्ग करते जाए तब जाके वो पर्टिकुलर बात आने वाली है, तो हम कहेंगे वो उसकी वर्गशाला का है। और वर्गशाला का देखो अर्धच्छेद का अर्धच्छेद वर्गशाला का होती है, संख्यात ही हो गए सब, हाँ वर्गशाला का होती
है। so, धारा का एक भी यहाँ पे नहीं होगा
क्या,
विषम धारा में जो हमने देखा है,
कौन की विषम धारा, अच्छा विषम धारा, हाँ
उसकी एक ही संख्या जिससे नहीं होगी, क्या होगी,
इसके सभी स्थान समरूप है,
समरूप है।
अभी इसको पढ़ेंगे, देखो वो तो पहले बात आई थी ना विषम धारा, ये सभी स्थान समरूप है।
विरूपक धारा पे एक भी स्थान उसका नहीं है, विषम धारा के एक भी संख्या यहाँ पे नहीं है, शोधपूर्ण संख्या पे भी यहाँ पे नहीं है,
क्योंकि ये सम संख्या के ही वर्ग कर रहे हैं, वो विषम कैसे हो गए? विरूप वर्ग लखो दिया, वो तो आठ के वर्ग वर्ग करते जाओ या पांच बारह के करते जाओ, सम संख्याओं के वर्ग राशियां समरूप ही होगी। बेदुनी चार, चार चौक सोलह, छ छ छत्तीस, आठ आठ चौसठ, दस को दस गुना करेंगे तो जीरो में आ जाएगी लास्ट में। ख्याल में आई ना बस? अब हमने केवल अभी यहाँ 67 नंबर को पढ़ा है, अभी उसका अर्थ नीचे देखते हैं। यानी यहाँ तो हमने ये बात देखी, अवर परिता संख्यात ने जघन्य परिता संख्यात की वर्गशाला का भी, उसके अर्धच्छेद राशि भी और उसका प्रथम वर्गमूल भी इसी धारा में आता है। कहते आवली, यानी उसके आगे चलकर, आवली तो कितना जघन्य युक्ता संख्यात है, वो भी कितनी बार जघन्य परिता संख्यात के उतनी बार आपस में गुणा करके वो संख्या निकलने वाली, वो भी वर्ग रूप संख्या, द्विरूप के वर्ग संख्या में वो आएगी, आवली भी आएगी। आवली के वर्ग को क्या कहते हैं? प्रतरावली। यानी जघन्य परिता संख्या तो आता है हमने देखा, आवली यानी जघन्य युक्ता संख्यात भी इस राशि में आता है, उसका वर्ग यानी जघन्य असंख्याता संख्यात भी ये द्विरूप वर्ग धारा में आती है संख्या। अभी तो इतने ही बताए बताए, आगे सर्वचल अन्य बातें बताएंगे, पल्ले भी आता है और क्या क्या आता है सब बताएंगे। नहीं नहीं, घनावली तो उसमें घन रूप धारा में आएगी, द्विरूप घन धारा में आएगी। जो जो संख्या हम यहाँ लिए हैं उसके घन है वो नीचे की धारा में आएगी, यहाँ आवली को लेते तो घनावली नीचे चली जाएगी। हाँ, प्रतरावली इसी के आगे का स्थान है, जिसे 16 है, 16 का घन तो नीचे की धारा में आएगा और 16 का वर्ग 256 द्विरूप वर्ग धारा में आएगा। देखो गाथार्थ पढ़ते यहाँ का, इसी प्रकार पूर्व पूर्व का वर्ग करते हुए संख्यात स्थान आगे जाकर, यानी ये संख्यात स्थान भी बहुत बड़े संख्यात हो जाएगी, जघन्य परिता संख्यात की वर्गशला का, फिर इमीडिएट इमीडिएट नहीं आएंगे ये, बीच में और संख्यात स्थान चले जाएंगे तो उसके अर्धच्छेद, और कुछ स्थान चले जाएंगे तो उसका प्रथम वर्गमूल, तो प्रथम वर्गमूल के बाद कितने स्थान जाने पर ये जघन्य परिता संख्यात आएगा? बोलो नितिन भाई, जघन्य परिता संख्यात के वर्गमूल को कितने स्थान आगे जाने पर जघन्य परिता संख्यात आएगा? लक्ष्मी जी आप, पनट्ठी के वर्गमूल से कितने स्थान आगे जाने पर पनट्ठी आएगी? के कितने स्थान आगे जाने पर पनट्ठी आएगी? नेक्स्ट अरे सबने बताया था, इन्होंने भी बताया था, इनको चुपिटाया था। हमने क्या देखा, किसी वर्गमूल का एक बार वर्ग करेंगे तो वो संख्या आएगी ना। तो मैंने प्रश्न क्या पूछा था, जघन्य परिता संख्यात का वर्गमूल है, वो द्विरूप धारा में, वो वर्ग धारा में आता है, तो उसके कितने स्थान आगे जाना पड़ेगा तब जाके जघन्य परिता संख्यात आएगी? नेक्स्ट स्थान है, एक ही स्थान आगे चलने पर। किसी वर्गमूल का वर्ग करो ना तो वो संख्या आएगी ना डायरेक्ट। तो ये चुप नहीं बैठे थे, इन्होंने भी उत्तर दिया, अरविंद भाई ने भी उत्तर दिया था। आपने ऐसा कुछ किया था? नहीं
किया था। अच्छा,
हाँ नहीं नहीं, उन्होंने ना उन्होंने देखा भी नहीं, नहीं वो नहीं देख, वो तो सोच कर उन्होंने कुछ उत्तर दिया था। देखिए हम केवल वो असंख्यात है, अभी हमको क्या पता, ऐसा लगता है ना हमको सोच वर्गमूल के नेक्स्ट स्थान तो इसी का होगा। हाँ, जैसे 16 का वर्गमूल क्या है?
चार।
तो चार के कितने स्थान आ जाएंगे तो 16 आएंगे, कितने स्थान नेक्स्ट स्थान है, क्योंकि चार का वर्ग करो तो आता है ना 16। यही कहना चाहती हूँ। देखो वर्गशाला का राशि में, अर्धच्छेद राशि में और प्रथम वर्गमूल के बीच बीच में बहुत स्थान जा सकते हैं। ये पनट्टी के नहीं जाते हैं क्योंकि वो छोटी राशि है, क्योंकि पनट्टी की वर्गशाला का भी 4 है, उसका अर्धच्छेद 16 है और इमीडिएट नेक्स्ट उसका वर्गमूल है। ये तो पनट्टी में लगातार घटित होता है, उन जितना आगे बढ़ेंगे, हाँ जितना आगे बढ़ेंगे तो बहुत पहले वर्गशाला का आ जाएगी, उसके बीच में बहुत सारे स्थान छोड़कर अर्धशाला का आ जाएगी, उसके बाद बहुत सारे स्थान छोड़कर प्रथम वर्गमूल आएगा और उसके नेक्स्ट स्थान में वो राशि आएगी। ये तो हमने जघन्य परिता संख्यात के बारे में देखा। देखो गाथार्थ भी पढ़ेंगे यहाँ। इसी प्रकार पूर्व पूर्व का वर्ग करते हुए संख्यात स्थान आगे जाकर, क्योंकि उन्होंने 31 तक तो बताए थे, 6 स्थान तक, तो ऐसे बहुत सारे स्थान आगे जाने पर जघन्य परिता संख्यात की वर्गशाला का, देखो ये सब संख्यात में आ जाएंगे, फिर उसके अर्धच्छेद भी आएंगे इसी धारा में आते, बस इतना उनको कहना था। प्रथम वर्गमूल भी इसी धारा में है और जघन्य परिता संख्यात की राशि, ये कुछ राशियां उन्होंने बताया कि इस धारा में आती है, कॉमा लगाया। फिर कहते आवली, आवली भी इसी राशि में आती है, क्योंकि जघन्य परिता संख्यात का जघन्य परिता संख्यात बार वर्ग करेंगे तो ये आता है, तो कितने बार वर्ग का वर्ग होता चला जाएगा, जघन्य युक्त संख्या, तो वो भी इसी धारा में है। और कहते प्रतरावली भी इसी धारा में है, युक्त संख्यात का वर्ग यानी जघन्य असंख्याता संख्या। ये इस धारा में कौन कौन सी विशिष्ट संख्याएं थे जो हमको नॉन संख्या जो है ना उसके बारे में यहाँ बता रहे। विशेषार्थ, इसी प्रकार पूर्व पूर्व का वर्ग करते हुए संख्यात स्थान आगे जाकर जघन्य परिता संख्यात की वर्गशाला का राशि उत्पन्न होती, उत्पन्न होती नहीं, वो इस वर्ग धारा में है, बस इतनी बात कहना चाहते हैं। इससे संख्यात स्थान आगे जाकर, संख्यात बताए ना बीच में कुछ स्थान चले जाएंगे, तब जाके उसी की अर्धच्छेद राशि उत्पन्न होती है यानी जघन्य परिता संख्यात की। इससे संख्या स्थान आगे जाकर उसका प्रथम वर्गमूल उत्पन्न होता है और इस प्रथम वर्गमूल का एक बार वर्ग करने से जघन्य परिता संख्यात राशि की उत्पत्ति होती है। पनट्टी का प्रथम वर्गमूल 256 है, हाँ उसका वर्ग तो पनट्टी है, क्योंकि प्रथम वर्गमूल ही क्या बताता है, उसका मूल क्या, और वो मूल का फिर वर्ग करो तो वही संख्या आएगी। हाँ अभी संख्या स्थान आगे जाकर इसका अर्थ ये है, देखो
संख्या स्थान आगे जाकर होगा या फिर असंख्या चाहिए,
क्यों
देखते हैं। अच्छा हम वर्ग धारा,
अभी यहाँ हमने जघन्य परिता संख्यात लिखा, उसका एक बार वर्ग किया तो जपर एस टू 2 हो गया, उसका वर्ग किया जपर एस टू 4 हो गया, उसका वर्ग किया
जपर एस टू 8,
हाँ जपर एस टू 8, तो इस तरह से वर्ग के वर्ग करते गए, तो उसके जप बार करना है ना, जप असंख्यात होने दो, परंतु उसको आगे केवल असंख्यात बार, देखो मैं अब दूसरा उदाहरण, विरलन किया आपस में गुणा किया, क्यों नहीं, देखो हम देखते हैं वीर जिसका हम विरलन और देय करते, छोटी संख्या को देखते, 4 को हमने 4 बार लिखा और आपस में गुणा किया तो हमको 256 मिलेगी, तो 4 का कितने बार वर्ग का वर्ग करो, 4 है, 4 का वर्ग 16 है और 16 का वर्ग 256 है, यहाँ तो 4 बार आपस में गुणा किया परंतु वर्ग तो और दो ही बार किया, दो ही स्थान आगे गए, यहाँ 4 बार किया यहाँ दो ही स्थान आगे गए, अब उसके बदले हम यहाँ बड़ी संख्या लेते हैं सोलह को सोलह बार लिखो, जो संख्या आएगी उसके बदले अभी, यानी यहाँ सोलह बार किया तो जो संख्या आने वाली है तो उसके बदले हम सोलह का वर्ग एक बार किया, 256 आया, तो सोलह ही है, 256 आया, 256 का वर्ग किया पनट्ठी आया, पनट्ठी का वर्ग किया बादल आया, बादल का वर्ग किया इकट्ठी आया। अब 16 को 16 बार गुणा करेंगे तो कितनी संख्या आएगी, 16:16। अब निकालते हैं, देखो 4096 तो 16 को हम 16 को चार बार आपस में गुणा करते तो 4096 आते हैं ना। नहीं, वो पनट्ठी आ जाएगी, देखो चार बार करते तो पनट्ठी आएगी, और ऐसे हमको 16 बार करना है, यानी पनट्ठी इंटू पनट्ठी। बादल कैसे, बादल गुना बादल आएगा,
बादल इंटू बादल
इकट्ठी आती है, तो इकट्ठी आ गई नहीं है इकट्ठी, तो 16 को 16 बार यानी 16 बार किया तो इकट्ठी आई थी, परंतु वर्गस्थान कितने आगे गए, 1, 2, 3, 4 ही वर्गस्थान आए। 16 को 16 बार, जैसे हमने 16:16 किया तो वहाँ 16 बार आपस में गुणा किया, परंतु उसके वर्गस्थान में तो हम चार ही वर्गस्थान आगे गए। वैसे वो भले जघन्य असंख्या, वो जघन्य है असंख्यात, जघन्य परिता संख्यात है, उसको जघन्य परिता संख्यात बार लिख के गुणा किया है तो उसके वर्ग कितने बार हुए, असंख्यात बार तो नहीं हो सकते ना वर्ग, क्योंकि वो मिनिमम असंख्यात ली है हमने। जैसे 16 बार नहीं करना है हमको, चार बार ही आगे चलना है, यहाँ तो 16 का चौथा भाग है और वहाँ असंख्यात का कुछ भाग हो जाएगा तो संख्यात ही आएगा, तो ये संख्या स्थान आगे जाकर ये बात बराबर है। हमें तो वहाँ क्या लिखा है उसके सोचना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना इतने बार आपस में गुणा किया तो असंख्यात, परंतु वर्गस्थान संख्यात ही चले गए, केवल 16 को लिया तो इतना रिफरेंस पड़ा, वो तो असंख्यात में कितना दे। हाँ देखो इसको हम ये हमने देखा कि उस राशि में हमको ये जगन्य परिता संख्यात राशि भी आई, आगे कुछ कितने संख्या स्थान आगे चलकर जघन्य युक्ता संख्या प्रमाण आवली की उत्पत्ति होती है, तो हम एक चौंकते हैं ना, हम संख्या स्थान कैसे गए, इतनी बार तो वर्ग किए पर द्विरूप वर्ग धारा में संख्या स्थान हम आगे चले गए थे। देखो जो राशि विरलन और देय के विधान से उत्पन्न होती है उस राशि की वर्ग शलाकाएं और अर्धच्छेद उस धारा में नहीं मिलते, ये एक नियम है। फिर से, जो राशि विरलन और देय के विधान से उत्पन्न होती है, यानी उसी संख्या को विरलन करना उसी को देय रूप से देना, जैसे हमने चार का विरलन किया एक 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 और चार को ही देय रूप से दिया तो 256 मिला, तो 256 की वर्ग शलाका 3 है वो इस धारा में नहीं आएगी, उसके अर्धच्छेद 8 है वो इस धारा में नहीं आएंगे। नहीं, उसका अर्थ क्या है, जो राशि विरलन और देय से उत्पन्न आई, आवली जो है जघन्य युक्ता संख्यात, वो विरलन और देय से आई, कौन सा विरलन किया, जघन्य परिता संख्यात का विरलन किया, जघन्य परिता संख्यात को देय करके आई थी, इसलिए आवली वाली राशि तो इस धारा में है, परंतु आवली की वर्गशाला का आवली के अर्धच्छेद इस द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएंगे। देखो कितना गणित वहाँ डेवलप होगा, वहाँ कितने फॉर्मूले बनाए उन्होंने। गाथा 73 के इस नियम के अनुसार इस द्विरूप वर्ग धारा में आवली की उत्पत्ति तो होती है, जैसे जघन्य परिता संख्यात को हमने इस धारा में देखा था, परंतु उसकी वर्गशला का भी इस राशि में धारा में है, उसके अर्धच्छेद भी इस धारा में है, प्रथम वर्गमूल तो होता ही होता है। वैसे आवली तो इस धारा में है, परंतु आवली की वर्गशला का और उसके अर्धच्छेद इस धारा में नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो राशि विरलन और देय से उत्पन्न होती है। हमारी पनठी वाली जो राशि है वो विरलन और देय से उत्पन्न नहीं हुई थी। क्योंकि 16 को चार बार आपस में गुणा करने से मिली थी, वो किसी संख्या को विरलन देय रूप से वो नहीं मिली थी। आप कहेंगे 16 को मत ले लो, 4 को ले लो, तो 4 को कितने बार गुणा करने पर वो राशि मिलेगी? 8 बार। तो विरलन देय राशि तो वहां पर भी घटित नहीं होती है ना, यानी वो राशि हमको उसी का विरलन करना, उसी को देय रूप से देना। इसे दो राशि, दो संख्या 16 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो आता है, वो अर्धच्छेद होता है, उसको अर्धच्छेद कहते हैं। ख्याल में आई ना बात? इस नियम के अनुसार इस द्विरूप वर्ग धारा में आवली की उत्पत्ति तो होती है, किंतु आवली की वर्गशला का या अर्धच्छेद राशियों की उत्पत्ति नहीं होती। शंका, संख्या स्थान आगे जाकर आवली उत्पन्न होती है, इसका क्या तात्पर्य है? हम उसको असंख्यात करने निकले ना, हाँ यही, इसलिए शंकाकार ने शंका पूछ ली। समाधान, देय राशि के ऊपर विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद हो उतने वर्ग स्थान आगे जाकर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है, अर्थात जघन्य परिता संख्यात का विरलन कर जघन्य परिता संख्यात ही देय देने पर, यहां क्या लिखा, देय राशि के ऊपर विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद हो उतने वर्ग स्थान जाकर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है। हम अपने छोटी संख्या में ट्रांसफर करेंगे इसको, भी है यहाँ पर हमारी देय और विरलन से उत्पन्न होने वाली 256 राशि हमको मालूम है, ये फॉर्मूला वहां घटित करेंगे। देय हमारी विरलन राशि है 4, तो 4 का विरलन किया और 4 को देय रूप से दिया, यानी विरलन राशि 4 है और देय राशि भी 4 है। अब यहाँ क्या लिखा है, देय राशि के ऊपर, देय राशि 4 है, उसके ऊपर कितने विरलन राशि भी 4 है, तो विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद हो, 4 के अर्धच्छेद कितने हैं, 2 है, उतने वर्ग स्थान जाकर आगे जाकर विवक्षित राशि उत्पन्न होती है। तो केवल वो 4 में 2 नहीं मिलना ना, जितने अर्धच्छेद है उतने ही राशि आगे चलनी है, तो 4 जो राशि है उसके आगे कितने स्थान जाना है, 2 स्थान ही आगे जाना है, तो 4 16 और 256 दो स्थान आगे जाने पर वो मिलती है। अभी हमारी क्या है, विरलन राशि है जघन्य परिता संख्या और देय राशि भी उतनी है, तो जघन्य परिता संख्या हमारे मान लेते कोई एक स्थान पर है, तो उसके वर्ग धारा में इसके कितने आगे जाकर वो आवली वाली स्थान मिले जाएगी, तो इसके जितने अर्धच्छेद है उतने आगे चले जाना। जघन्य परिता संख्यात राशि वर्ग धारा में है, द्विरूप वर्ग धारा में है, उसका वर्ग उसका वर्ग उसका वर्ग कितने बार करेंगे, इसके अर्धच्छेद बार करेंगे, तो जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद कितने हो गए, संख्यात हो गए, क्योंकि वो पहले में पहला असंख्यात का भेद है, उसके अर्धच्छेद तो संख्यात ही हो गए। यानी कोई भी वो विरलन देय से जो राशि उत्पन्न होती है उसमें देय राशि के आगे कितने स्थान जाना है,
अर्धच्छेद प्रबल स्थान
अर्धच्छेद प्रमाण, अर्धच्छेद अर्धच्छेद आगे जाकर वो राशि मिलेगी। देखो देय राशि के ऊपर विरल राशि के जितने अर्धच्छेद उतने वर्गस्थान आगे जाकर, यानी ऐसा ये लिखना समझना है कि विरलन राशि के जो अर्धच्छेद है उतने स्थान आगे जाकर, किसके देय राशि के आगे उतने स्थान चले जाना, उतने वर्ग स्थान जाना है, तो हमें क्या मिलेगा, वो विवक्षित राशि उत्पन्न होगी। अर्थात जघन्य परिता संख्यात का विरलन कर जघन्य परिता संख्यात ही देय देने पर विरलन राशि यानी जघन्य परिता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है परिता संख्यात लिखा है वो जघन्य ही होना चाहिए, तो जघन्य परिता संख्यात से उतने वर्ग स्थान आगे जाकर आवली उत्पन्न होती। अथवा जघन्य परिता संख्यात का विरलन कर जघन्य परिता संख्यात ही देय देकर परस्पर गुणा करने से जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण आवली उत्पन्न होती है। जघन्य युक्ता संख्यात की जितनी संख्या उतने समयों की एक आवली होती है। जैसे उन्होंने यही बात बताई, यहाँ विवक्षित राशि 256 है, विरलन राशि 4, विरलन राशि के अर्धच्छेद 2 और देय राशि 4 है। अतः 4 का विरलन किया और उसके ऊपर 4 ही देय दिया, विरलन राशि के अर्धच्छेद 2 है इसलिए दो वर्गस्थान यानी एक वर्गस्थान 16 है, दूसरा वर्गस्थान 56 है, आगे जाकर विवक्षित राशि 256 की प्राप्ति हो जाएगी। अथवा 4 का विरलन कर उस पर 4 ही देय देकर परस्पर में गुणा करने से भी विवक्षित राशि 256 की उत्पत्ति हो जाएगी। यानी ये जघन्य परिता संख्यात के आगे संख्या स्थान पर आवली क्यों है उसका यहाँ हमको समाधान मिल जाता है, बाकी चर्चा कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से